पाठ 33 अध्याय 23।
बारूक लेविन ने लेव्य व्यवस्था 23 को पवित्र समय का कैलेंडर नाम दिया है, इसलिए हमें इस अध्याय में यहोवा द्वारा निर्धारित और इज़राइल के लोगों को दिए गए धार्मिक आयोजनों की विस्तृत अनुसूची मिलती है। ये धार्मिक आयोजन हमारे लिए 7 बाइबल पर्वों के रूप में सबसे अधिक पहचाने जाते हैं, और यह पहली बार नहीं है जब हमें इनसे परिचित कराया गया है, और न ही यह आखिरी बार है जब हमें इस बारे में अधिक विस्तृत जानकारी मिलेगी कि इन्हें कैसे, कब और क्यों मनाया जाना चाहिए।
इब्रानी विद्वान आपको बताएंगे कि तोरह के 3 प्राथमिक खंड हैं जहां धार्मिक घटना कैलेंडर प्रस्तुत किया गया है। पहला निर्गमन अध्याय 21 से 23 में है। ये खंड इब्रानियों के बीच वाचा की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। वाचा की पुस्तक में वे नियम और अध्यादेश शामिल हैं जो निर्गमन अध्याय 20 में 10 आज्ञाओं के दिए जाने के तुरंत बाद दिए गए थे। याद रखें कि 10 आज्ञाएं मूल रूप से तोरह के 613 नियमों में से पहले 10 थे। हालांकि ये पहले 10 नियम 10 बुनियादी सिद्धांतों के रूप में भी हैं, जिन पर शेष 603 कानून और परमेश्वर के सभी भविष्य के आदेश आधारित होंगे। ऐसा कोई कानून नहीं दिया गया है जो 10 आज्ञाओं के सिद्धांतों और पैटर्न के अनुरूप न हो। और मुझे इस बात पर आश्चर्य करने की अनुमति दीजिए कि वही चर्च जिसने बहुत पहले यह निर्धारित कर लिया था कि तोरह एक अप्रचलित दस्तावेज है, कानूनों को अनुग्रह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, और कहता है कि तोरह के कानूनों और सिद्धांतों का पालन करना भयंकर कानूनवाद के बराबर है, फिर पलटकर उन पहले 10 पुराने कानूनों 10 आज्ञाओं का सम्मान वास्तव में मांग करेगा जिनका ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। वाचा की पुस्तक निर्गमन 22 से 23 के बाद तोरह का अगला खंड जो धार्मिक घटना कैलेंडर में जोड़ता है वह है जिसे हम वर्तमान में लेव्य व्यवस्था 23 में पढ़ रहे हैं, जो संख्या 28 से 29 के साथ संयुक्त है। तीसरा खंड व्यवस्था विवरण में है। धार्मिक आयोजन कैलेंडर पर तोरह के 3 अलग अलग खंड क्यों हैं? क्या वे एक दूसरे की पुनरावृत्ति मात्र हैं? क्या वे एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं? नहीं, ये खंड हमें धार्मिक आयोजन कैलेंडर के अलग अलग पहलू बताते हैं जिनका मुख्य ध्यान 7 बाइबल पर्वों पर है।
बाइबल की शाब्दिक व्याख्या का विरोध करने वालों और सामान्य रूप से ईश्वर का विरोध करने वालों के बीच यह बात लंबे समय से प्रचलित है कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में मतभेद और विसंगतियां हैं, और मेरे लिए यह कहना कि वे मतभेद मौजूद नहीं है बेईमानी होगी। पवित्र शास्त्र को चुनौती देने के जवाब में चर्च को लंबे समय से सिखाया जाता रहा है कि 4 सुसमाचारों में हम जो अंतर देखते हैं वे संघर्ष या त्रुटि का विषय नहीं है, बल्कि वे 4 अलग अलग पुरुषों की आंखों के माध्यम से बताई गई एक ही घटनाएं हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे और अन्य ने अपनी जानकारी सीधे प्रत्यक्षदर्शियों से एकत्र की थी। जैसा कि हम सभी अपने निजी जीवन के अनुभवों में पहचानते हैं, जब कई लोग एक ही घटना को देखते हैं या एक ही भाषण या धर्मोपदेश सुनते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की थोड़ी अलग धारणा बन जाती है। मैं आपको अधिकार के साथ बता सकता हूं कि यह सच है, क्योंकि हर शिक्षण सत्र के बाद में इस बात से चकित हो जाता हूं कि अलग अलग लोग मुझे क्या बताते हैं कि उन्होंने मुझे कहते हुए सुना और मुझे कहते हुए नहीं सुना, और उन्होंने जो कुछ कहा उससे मेरा क्या मतलब था, और उन्होंने जो कुछ मैंने कहा उससे क्या लिया जो उनके लिए अनुप्रयोग या प्रभाव था। सुसमाचारों के विवरणों में यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक लेखक यीशु और उनके जीवन और मंत्रालय के कार्यों को थोड़ा अलग तरीके से देखता है। यदि ऐसा नहीं था तो सामान्य ज्ञान हमें बताता है कि हमें संदेह करना चाहिए कि कुछ पूरी तरह से ईमानदार संपादन नहीं हुआ है, ताकि सब कुछ पूरी तरह से सुसंगत दिखाई दे। जो अंतर उत्पन्न होते हैं वे कुछ मामलों में वजन और जोर का मामला है, अन्य मामलों में यह केवल लेखक द्वारा चुनने का मामला है कि कौन सी घटनाओं को दर्ज करना है और कौन सी घटनाओं को छोड़ना है। यह उस श्रोता के लिए क्या महत्वपूर्ण लगता है, बनाम क्या सामान्य लगता है, इसका मामला था। और जैसे किसी मुकदमे में कई गवाहों की गवाही सुनने पर
एक से सुनने की तुलना में आमतौर पर एक अधिक पूर्ण तस्वीर एक साथ मिलती है। फिर भी उसी समय हमें अवसर कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो केवल स्थिति को भ्रमित करती है। मैं इस घटना को चट्टान के चारों ओर घूमना कहता हूं। यदि हम में से प्रत्येक एक बड़े पत्थर के पास जाता है और प्रत्येक को उस पत्थर के चारों ओर एक अलग बिंदु पर खड़े होने का निर्देश दिया जाता है और फिर हमसे पूछा जाता है कि हम अपने सामने क्या देखते हैं, तो प्रत्येक विवरण कुछ हद तक भिन्न होने वाला है, क्योंकि पत्थर हर कोण से एक समान नहीं है। यह उस स्थान के आधार पर थोड़ा अलग दिखता है जहां आप खड़े हैं, फिर भी यह हम सभी के लिए बिल्कुल एक ही पत्थर है।
धार्मिक घटनाओं के इब्रानी कैलेंडर के बारे में तोरह के इन तीन खंडों के साथ भी ऐसा ही है। इन तीन खंडों में से प्रत्येक थोड़ा अलग जोर या वजन या परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जिसे जब एक समग्र रूप में लिया जाता है तो हमें इस संबंध में परमेश्वर अपने लोगों से क्या अपेक्षा करता है इसकी अधिक पूर्ण तस्वीर मिलती है। क्योंकि हम तोरह के पुरोहितीय भाग लैव्य व्यवस्था में हैं, इसलिए हमें अधिक पुरोहितीय दृष्टिकोण मिलेगा। इसलिए बाइबल के पर्वों के आवश्यक अनुष्ठानों और उनसे संबंधित बलिदानों पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जाएगा।
आइए हम लैव्य व्यवस्था 23 का पूरा भाग पढ़ें। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम प्रासंगिक भागों को पुनः पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं कि हम इन विभिन्न त्योहारों से जुड़े कुछ विवरणों पर गहराई से विचार करने जा रहे हैं, क्योंकि वे मसीहा के जीवन और मंत्रालय में इतनी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। हम इस पर भी करीब से नजर डालने जा रहे हैं, क्योंकि इन अंशों को सदियों से ईसाइयों द्वारा इतनी गलत तरीके से समझा गया है कि परिणाम स्वरूप हम कुछ बहुत ही अजीब और बहुत ही भ्रामक चर्च परंपराओं और सिद्धांतों के साथ चले गए हैं।
लैव्य व्यवस्था 23 पूरा पढ़ें। हमें लैव्य व्यवस्था के एक अंश की सामान्य शुरुआत मिलती है, जहां यह कहा गया है कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है और मूसा को बता रहा है कि उसे इसराइल के लोगों से क्या संबंध रखना है। इसलिए जबकि ये अंश एक पुजारी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए गए हैं, फिर भी वे पूरे इसराइल राष्ट्र को निर्देशित हैं, न कि केवल पुजारियों को।
यहोवा मूसा से कहता है कि आगे जो कुछ भी होगा वह पवित्र अवसरों के अपने निश्चित या नियुक्त समय के बारे में है। निश्चित या नियुक्त समय के रूप में अनुवादित इब्रानी शब्द मोएड है, और निश्चित समय या नियुक्त समय मोएड का एक अच्छा और सटीक अनुवाद है। ये समय निश्चित से भी अधिक हैं, तथापि वे पवित्र भी हैं। वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और इसलिए उन्हें इसराइल के लोगों के लिए पवित्र माना जाना चाहिए। आइए याद रखें कि पवित्र केवल यह दर्शाता है कि किसी चीज को विशेष के रूप में अलग रखा गया है। और जबकि हम अभी वहां नहीं जाएंगे, मैं यह भी चाहता हूं कि आप पूरी तरह से समझें और विचार करें कि परमेश्वर के पवित्र समय विशेष हैं, क्योंकि वे पवित्र हैं, और यह कि नया नियम के वे भाग जो प्रतीत होते हैं, और मैं रेखांकित करता हूं प्रतीत होते हैं, यह इंगित करने के लिए कि अचानक परमेश्वर के सभी पवित्र समय उलट गए हैं और संत पौलुस अब उन्हें नकारात्मक चीजें कहते हैं, जैसे कि तत्व आत्माओं और बेकार होना गंध परीक्षण में पास नहीं होता है। यह एक भयानक अनुवाद है, संदर्भ से बाहर लिया गया। यह एक यहूदी विरोधी एजेंडे का परिणाम है जिसने 1900 वर्षों से चर्च को बंधक बना रखा है। इसराइल के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन बकरियों और बैलों के रक्त का उपयोग करने से लेकर प्रायश्चित के लिए यीशु के सिद्ध रक्त के एक बार के बलिदान में बलिदान प्रणाली के भविष्यवाणी किए गए परिवर्तन की पूर्ति को स्वीकार करना और पहचानना एक बात है। यहोवा के लिए पवित्र शास्त्र में पवित्र अनुष्ठानों के इन निश्चित समयों को सावधानी पूर्वक निर्धारित करना, उन्हें अच्छा और अनिवार्य और स्थायी घोषित करना, और फिर कथित तौर पर यीशु के आगमन के साथ उन्हें रद्द करना, और न केवल उन्हें रद्द करना बल्कि इन बिल्कुल उन्हीं पवित्र घटनाओं को हमेशा से बेकार और केवल मनुष्य के पतित दिमाग से उत्पन्न होने वाली चीजें घोषित करना एक और बात है। और यद्यपि हमारे युग में उसी धर्मशास्त्र को लगातार पढ़ाया जाता है, आमतौर पर प्रतिस्थापन धर्मशास्त्र या नवीनतम प्रवृत्ति के साथ, कि यीशु कभी भी इसराइल के लिए नहीं थे। ये उन नया नियम अंशों की एक दुखद और कभी कभी जानबूझकर गलत फहमी और गलत अनुवाद और तोरह के बारे में एक और भी भयानक अज्ञानता से आता है। ये पवित्र अनुष्ठान यहोवा द्वारा उलटे नहीं गए थे। वास्तव में हमारे पास यीशु के यरूशलेम जाने की लगभग हर कहानी इन बाइबल के पर्वों में से किसी एक को मनाने के लिए उनकी आवश्यक और आनंदमय तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से है, और यह अनुमान नहीं है। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि यीशु उसी समय लैव्य व्यवस्था के अनुष्ठानों का पालन कर रहे थे जब उन्हें स्थापित करने वाले पिता द्वारा उन्हें बुरा माना जा रहा था, या इसके विपरीत कि उनके वर्तमान और भविष्य के शिष्यों के लिए उनका संदेश था, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, लेकिन जैसा मैं करता हूं वैसा मत करो? बकवास। यहोवा जिस पहले निश्चित समय मोएड से निपटता है वह सप्त है, और फिर भी सप्त और निश्चित समय के बीच एक अंतर किया गया है, और सही भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले पाठों में सिखाया है, कुछ लोगों की सोच के विपरीत सप्त को सबसे पहले माउंट सिनाई पर मूसा को दी गई 10 आज्ञाओं में से एक के रूप में स्थापित नहीं किया गया था। सप्त को सृष्टि के समय उत्पत्ति 2 में स्थापित किया गया था।
उत्पत्ति 2 का एक इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनके सारे दल का निर्माण पूरा हो गया। 2 और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन पूरा किया, और उसने अपने सारे काम से जो उसने किया था 7वें दिन विश्राम किया। 3, तब परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की ओर बनाए हुए सारे काम से विश्राम लिया।
माउंट सिनाई पर सप्त का आविष्कार करने के बजाय परमेश्वर ने बस इसराइल के कर्तव्य पर बल दिया कि वह सप्त का पालन करे, एक ऐसा पालन जिसे स्पष्ट रूप से मानव जाति द्वारा बहुत पहले ही भुला दिया गया था।
निर्गमन 20:8, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 9, 6 दिन तक तुम परिश्रम करते हुए अपना सब काम करना। 10, परंतु 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उस दिन न तो तुम कोई काम करना, न तुम्हारा बेटा, न तुम्हारी बेटी, न तुम्हारा दास, न तुम्हारी दासी, न तुम्हारा पशु, न तुम्हारा परदेशी जो तुम्हारे संग रहे। 11, क्योंकि 6 दिन तक तुम कोई काम काज न करना, यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने सप्त के दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया।
यहां मुख्य शब्द है याद रखना। इब्रानी में इसे कजार कहते हैं, और इसका अर्थ है याद दिलाना, याददाश्त से वापस लाना। इसका अर्थ है किसी ऐसी चीज को वापस लाना जो पहले हुआ करती थी। सप्त के दिन का पालन ईश्वर और इसराइल के बीच शुरू नहीं हुआ था। यह सृष्टि के अंत में ईश्वर और सामान्य रूप से सभी मानव जाति के बीच स्थापित किया गया था।
सप्त के लिए इब्रानी शब्द सप्त है, जो निश्चित रूप से मोएड से काफी अलग है, जिसका अर्थ है निश्चित समय। इसीलिए सप्त शब्द का अर्थ मोएड के दौरान होने वाली गतिविधियों से अलग है। आज के पाठ में आगे बढ़ने पर यह और स्पष्ट हो जाएगा। हम इसे सामान्य रूप से देखने के बजाय थोड़े अलग कोण से देखने जा रहे हैं, क्योंकि हम पाते हैं कि सप्त के कई प्रकार हैं। सप्त और उनमें से प्रत्येक का धार्मिक घटनाओं के कैलेंडर में एक अलग अर्थ और स्थान है।
पद 3 में उस तरह के 7वें दिन का, 7वां 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 दिन का, 7वां
सातवां दिन का, 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 सातवां दा के सप्त में तीन तथ्य होते हैं जो इसे सप्ताह के सभी अन्य दिनों दिन एक से छह से अलग करते हैं और साथ ही उन सभी निश्चित समयों से भी अलग करते हैं जिनके लिए सप्त जैसी कुछ जरूरतें तय की गई हैं।
सातवां दिन सप्त सबसे पहले काम करने से मना करता है, इब्रानी में मेला खा। दूसरा, यह एक पवित्र दिन है और इसे इसी तरह माना जाना चाहिए। और तीसरा, यह सभी इसराइलियों द्वारा मनाया जाना चाहिए चाहे वे कहीं भी हों।
लेकिन पद तीन में काम मेला खा के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सातवें दिन सप्त का परिणाम पूर्ण विश्राम होता है। इब्रानी में इस पद में इस्तेमाल किए गए शब्द सप्त सप्तौन है। इस दो शब्द निर्माण के अर्थ को समझाने वाला सबसे अच्छा अंग्रेजी अनुवाद संभवतः निर्धारित कार्यों से सबसे अधिक आरामदेह विराम है। दूसरे शब्दों में सभी पवित्र अनुष्ठानों में से जिनमें से लगभग सभी बाइबल के पर्वों का पालन करने से संतुलन प्राप्त होता है, जिसमें उन पवित्र पर्वों में से कुछ दिनों में दैनिक कार्यों से विश्राम की आवश्यकता होती है। सातवें दिन सप्त ऐसा होना चाहिए जिसमें काम का सबसे अधिक विराम हो। यह ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। इसे किस हद तक लिया जाना चाहिए यह हमें निर्गमन में मन्ना के संग्रह के संबंध में दिखाया गया है। सप्ताह के छठे दिन दो गुना हिस्सा इकट्ठा किया जाना था ताकि इसे सातवें दिन शनिवार को इकट्ठा न करना पड़े। यहां तक कि संख्या में एक ऐसा मामला भी है जहां परमेश्वर ने सप्त के दिन लकड़ियों, संभवतः आग के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, हम यहां सातवें दिन सोमवार के बारे में बात कर रहे हैं जो हर सप्ताह के आखिरी दिन के रूप में आता है। सप्त को सृष्टि के अंतिम कार्य के रूप में स्थापित किया गया था।
फिर भी सिर्फ सातवें दिन के सप्त के अलावा भी दूसरे सप्त थे। उदाहरण के लिए, जहां तक अखमीरी रोटी के पर्व का सवाल है, उस पर्व का पहला दिन सप्त होता है, जैसा कि उसी पर्व का आखिरी दिन होता है। विभिन्न पर्वों में से अन्य के साथ भी विशेष सप्त के दिन जुड़े होते हैं। सप्त वर्ष भी होते हैं, अर्थात हर सातवां वर्ष। लेकिन इब्रानी में सप्त का दिन और सप्त का दिन के बीच एक अंतर किया गया है। सप्त का दिन का मतलब सिर्फ मूल सातवें दिन का सप्त है। सप्त का दिन विश्राम का कोई भी अन्य निर्धारित दिन होता है।
बात यह है, सप्त का शाब्दिक अर्थ है विश्राम या विराम। अगर हम सप्ताह के सातवें दिन को अंग्रेजी शब्द कहें जो इब्रानी शब्द सप्त से मेल खाता हो, तो इसका मतलब होगा आराम। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, विश्राम। इसलिए जब भी परमेश्वर किसी पवित्र समय का आदेश देते हैं, जब किसी व्यक्ति को अपने नियमित कर्तव्यों को अलग रखना होता है, तो बाइबल उसे सप्त कहती है। लेकिन सातवें दिन का सप्त इन सभी दिनों से ऊपर है। वास्तव में सप्ताह के सातवें दिन का नाम
सप्त है। सप्ताह के अन्य सभी दिनों को बाइबल में केवल संख्या, पहला दिन, दूसरा दिन और इसी तरह द्वारा संदर्भित किया जाता है।
अब बाइबल के पर्व के पहले दिन सप्त घोषित करने का एक मुख्य कारण यह था कि तैयारी करने के लिए समय था, इसलिए सप्त या बेहतर सप्ताटन के लिए सभी काम बंद करने की आवश्यकता नहीं थी। महिलाएं भोजन तैयार कर सकती थीं और पुरुष आग के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर सकते थे आदि। ट्रेड क्राफ्ट जैसे नियमित काम, जैसे कि अगर कोई आदमी बढ़ई होता उस सप्ताटन पर बंद हो जाता था, लेकिन वह अन्य काम कर सकता था जो मुख्य रूप से उस विशेष बाइबल पर्व की तैयारी से जुड़े थे। इसलिए सातवें दिन का सप्त मनुष्य के शारीरिक और आध्यात्मिक आराम के लिए था, ताकि वह पुनर्जीवित हो सके। लेकिन यह सृजन करने वाले किसी भी काम को करने से परमेश्वर के विराम की नकल भी था। अन्य तथा कथित सप्त आम तौर पर इसलिए थे ताकि इब्रानी लोग संबंधित बाइबल पर्व की तैयारी कर सके।
एक और छोटी सी बात और हम आगे बढ़ेंगे। पद तीन के अंत में यह प्रभु के लिए सप्त होगा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहां इस्तेमाल किया गया इब्रानी व्याकरण शब्द के आधिकारिक रूप का उपयोग करता है, इसलिए यह सप्त को प्रभु की संपत्ति बनाता है। सप्त परमेश्वर का है, ये उनका है। यह सप्त को पवित्र संपत्ति बनाता है और हमने पिछले पाठों में चर्चा की है कि जो कोई भी परमेश्वर की पवित्र संपत्ति के खिलाफ अपराध करने की हिम्मत करेगा उसके लिए भयानक परिणाम होंगे। पुराने नियम के इब्रानियों ने पूरी तरह से समझा कि सप्त परमेश्वर का है, जैसा कि यीशुआ के दिनों के इब्रानियों ने किया था। इसलिए लेव्य व्यवस्था 23 का 3 की तुलना लूका 6 का 5 में यीशु की टिप्पणियों से करें, और वह उनसे कह रहा था मनुष्य का पुत्र सप्त का प्रभु है। बेशक मनुष्य का पुत्र उन कई शब्दों में से एक था जिसका प्रयोग यीशु स्वयं को संदर्भित करते समय करते थे, और यहां उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि वह परमेश्वर है, एक ऐसी जगह है जहां उसके आसपास के सभी यहूदी अच्छी तरह से जानते थे कि वह क्या कह रहा था, कि वह यीशु सप्त के स्वामी, मालिक, प्रभु थे। सप्त मसीह की पवित्र संपत्ति थी, यह उसका क्षेत्र था।
उन्होंने यहां जितना जोरदार ढंग से कहा कि वे परमेश्वर हैं वह और कहीं नहीं कह सकते थे। इसलिए सप्त सप्ताह के पुनरावर्ती सातवें दिन को संदर्भित कर सकता है, या यह एक विशेष दिन को संदर्भित कर सकता है जिसके तहत किसी पर्व की शुरुआत में कुछ काम अलग रखा जाता है, या यह उस सातवें वर्ष को संदर्भित कर सकता है जिसके तहत खेतों में जुताई या रोपण नहीं किया जाना चाहिए। और सप्त आम तौर पर सात से मिलकर किसी भी ईश्वर स्थापित और पवित्र चक्र को संदर्भित कर सकता है। सात दिन, सात सप्ताह, सात वर्ष के वर्ष जुबली, सात सप्ताह के सप्ताह पेंटेकोस्ट या शावोत, और इसी तरह। इब्रानी शब्दों को जानना हमारी मदद करता है, क्योंकि आमतौर पर इब्रानी में सप्ताटन शब्द का इस्तेमाल आराम के दिनों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो बाइबल के पर्वों से जुड़े होते हैं, जबकि सप्त का इस्तेमाल सप्ताह में एक बार होने वाले उस अनोखे सातवें दिन के आराम को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।
लेव्य व्यवस्था 23:4-8 को पुनः पढ़ें। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बाइबल के त्योहार इसराइलियों के दैनिक जीवन के दैनिक और साप्ताहिक प्रवाह को बाधित करते थे, इसलिए वे असुविधा के बिना नहीं आते थे। इन त्योहारों का उद्देश्य अनुस्मारक के रूप में था, ईश्वर की व्यापक अपरिवर्तनीय प्रधानता की याद दिलाते हैं। निस्संदेह इसराइल के लोगों को बाइबल के इन त्योहारों, इन निश्चित समयों की भविष्य सूचक प्रकृति का कोई अंदाजा नहीं था। हम आज के विश्वासी इसे देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे केवल व्यवस्था के पालन के लिए किया था। निश्चित रूप से इनमें से कुछ पवित्र दिन बच्चों के लिए बहुत मजेदार थे, क्योंकि इससे उनके जीवन की एकरसता टूट जाती थी, लेकिन कई मामलों में यह वयस्कों के लिए बहुत काम का था, और इनमें से तीन त्योहारों में यह जरूरी था कि उन्हें मंदिर में मनाया जाए। इसलिए अगर कोई यरूशलेम में या उसके आसपास रहता था तो यह एक बात थी, लेकिन अगर ई यरूशलेम से दूर दक्षिण या उत्तर में रहता था तो यह दूसरी बात थी। तैयारी पहले से शुरू करनी होगी,
नियत दिन पर समय पर पहुंचने के लिए कई दिनों की यात्रा करनी होगी। हर यात्रा में कुछ हद तक खतरा था और यात्रा की लागत अधिक थी।
पद 5 में हम अखमीरी रोटी के पर्व की तिथियों और आवश्यकताओं को प्राप्त करना शुरू करते हैं, जिसे मत्सा का पर्व या सिर्फ मत्सा भी कहा जाता है। जब जो भ्रमित करने वाला हो सकता है वह यह है कि कोई इसे कैसे देखना चाहता है। इस पर निर्भर करते हुए फसह अनिवार्य रूप से अखमीरी रोटी के पर्व का हिस्सा है या अखमीरी रोटी फसह के पर्व का हिस्सा है। दोनों पर्व हालांकि अलग अलग नाम वाले हैं लेकिन जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। फसह का बलिदान निसान के 14वें दिन की शाम को चढ़ाया जाना है। निसान मोटे तौर पर हमारे मार्च अप्रैल समय सीमा से मेल खाता है, जिसका अर्थ है किंग यह एक वसंत पर्व है। हालांकि निसान इब्रानियों के लिए वर्ष का पहला महीना भी है, या बेहतर यह इब्रानियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले धार्मिक घटना कैलेंडर का पहला महीना है। मैं कैलेंडर के मुद्दों पर अब और नहीं जा रहा हूं, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि इब्रानी लोग 2 मुख्य प्रकार के कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, साथ ही कुछ और छोटे कैलेंडर भी, एक जानवरों के दशमांश के लिए और दूसरा फलों के दशमांश के लिए, नागरिक कैलेंडर और धार्मिक आयोजन कैलेंडर। इससे भ्रमित न हो, यह हमारे वित्तीय कैलेंडर और हमारे नागरिक कैलेंडर की अवधारणा से बहुत अलग नहीं है। यानी हमारे आधुनिक नागरिक कैलेंडर में हमारे पास 365 दिन का वर्ष है और हमारे नागरिक कैलेंडर वर्ष का पहला महीना 1 जनवरी है। लेकिन आप लोगों के लिए जो व्यवसाय में हैं, जब कर उद्देश्यों के लिए लेखांकन प्रथाओं की बात आती है तो आप अपने वित्तीय कैलेंडर वर्ष को अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। आप वर्ष को किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं, फरवरी, मार्च, अगस्त, दिसंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी भी सौर कैलेंडर और वित्तीय कैलेंडर वर्ष दोनों के लिए 365 दिन, 52 सप्ताह, 12 महीने और इसी तरह है। यह केवल प्रत्येक कैलेंडर के लिए शुरुआती बिंदु पर निर्णय लेने का मामला है जो अलग अलग होता है। इब्रानी धार्मिक कैलेंडर निसान को पहला महीना बनाता है। इब्रानी नागरिक कैलेंडर मिश्री को पहला महीना बनाता है। निसान और मिश्री में लगभग 1 कैलेंडर वर्ष का अंतर है। प्रत्येक कैलेंडर में अभी भी दिन, महीने और सप्ताह की संख्या समान है। यहूदी नव वर्ष एक नागरिक कैलेंडर घटना है, धार्मिक कैलेंडर घटना नहीं। इसलिए यह मिश्री के पहले दिन, नए नागरिक वर्ष के पहले दिन होता है। चूंकि निसान धार्मिक कैलेंडर का पहला महीना है, इसलिए वार्षिक चक्र का पहला त्योहार निसान में होता है। अब आपको थोड़ा और भ्रमित करने के लिए यह केवल संपादन द्वारा ही संभव है, यानी बाद के समय से संपादन कि हमारे पास कुछ बाइबलें हैं जो लैव्य व्यवस्था या तोरह में कहीं भी संदर्भ के लिए महीनों के नामों का उपयोग करती है। इस युग के दौरान महीनों के नाम नहीं थे, कम से कम उन्हें इब्रानियों द्वारा नाम नहीं दिया गया था, बल्कि उन्हें केवल 1, 2, 3, 12 तक गिना जाता था। वास्तव में यह तब तक नहीं था जब तक कि यहूदियों को बेबीलोन में निर्वासित नहीं किया गया था कि इब्रानियों ने वर्ष के महीनों को नाम दिए और स्वाभाविक रूप से उन्होंने पहले बेबीलोन के नामों को अपनाया। यहूदा लौटने के कुछ साल बाद यहूदियों ने बेबीलोन के महीनों के नामों को इब्रानी में बदल दिया, लेकिन वे अभी भी अपने बेबीलोन के मूल नामों से बहुत पहचाने जाने योग्य हैं।
मुद्दा यह है कि तोरह के सबसे सही और शाब्दिक अनुवाद में निसान को पहला महीना कहा जाएगा और आम तौर पर मिश्री को 7वां महीना कहा जाता है। इसलिए बाइबल की परिभाषा के अनुसार नया साल 7वें महीने के पहले दिन पड़ता है। क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि जब लोग यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शुरुआती बाइबल के दिनों में कोई घटना कब घटी थी, तो उनकी आंखें पीछे की ओर घूम जाती हैं। वैसे भी निसान 14 को शाम को पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले फसह के मेमने का वध किया जाना है। ये याद रखना कि इब्रानी दिन हमेशा सूर्यास्त से शुरू होता है, सुबह में ही। तो यह समझ में आता है कि अगर मेमने का वध निसान 14 के निर्देशानुसार किया जाना था तो इसे रात होने से पहले किया जाना चाहिए था, या कैलेंडर अगले दिन निसान 15 में बदल जाता। और इसमें से किसी का भी अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पद 5 में जहां अंग्रेजी में लिखा है 14वें दिन गोधूली के समय, गोधूली के समय के लिए इब्रानी शब्द बेइनहा अरबाइम है। और ये शब्द हालांकि अपने अर्थ में सटीक नहीं है, निश्चित रूप से मध्याह्न, दोपहर के बाद और अंधेरा होने से पहले के समय को इंगित करते हैं। इसलिए तकनीकी रूप से फसह दोपहर और शाम को मनाया जाने वाला एक दिवसीय कार्यक्रम है, निसान के 14वें दिन एक दिवसीय बाइबल पर्व। और इसका उपयोग मिस्र में उस भयानक और अद्भुत शाम को मनाने के लिए किया जाता था जब प्रभु ने मिस्र के लोगों और पशुओं सहित मिस्र के सभी पहलौठों को मारकर मिस्रियों को मारा था। इब्रानियों को एक मेमने को मारने और उसके खून को अपने घरों के दरवाजों की चौखटों पर रंगने के लिए कहा गया था, और जब प्रभु ने खून देखा तो वह उस घर के पहलौठों को नहीं मारते हुए वहां से चले गए। बेशक अगली सुबह फिरौन ने इसराइल को अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया और उन्होंने अपना पलायन शुरू कर दिया। यदि आपको अभी तक यह बात समझ में नहीं आई है तो बता दें कि फसह सप्ताह के किसी विशेष दिन से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरे शब्दों में निसान की 14 तारीख हर साल बदलती रहेगी कि यह सप्ताह के 7 दिनों में से किस दिन पड़ती है। यीशु के क्रूस पर चढ़ने की सटीक कालक्रम निर्धारित करने में यही समस्या है, क्योंकि हमें जो भी बाइबल समय दिया गया है वह फसह और अखमीरी रोटी के पर्व पर आधारित है। और एक बार फिर इन पर्वों तिथियां महीने के दिन पर आधारित हैं, सप्ताह के दिन पर नहीं। उदाहरण है, क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को होता है जो महीने का एक विशिष्ट दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सप्ताह के किस दिन पड़ता है, सोमवार, बुधवार, शनिवार, जो भी हो, यह 25 दिसंबर को ही पड़ना चाहिए। दूसरी ओर ईस्टर थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि यह फसह के बाद या नए छांद के बाद पहले रविवार को पड़ता है, जो व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसलिए महीने के दिन की परवाह किए बिना यह सप्ताह के एक विशिष्ट दिन रविवार को ही पड़ना चाहिए। पेसाच के बाद का दिन फसह एक और बाइबल पर्व का पहला दिन होता है, जिसे अखमीरी रोटी या मत्सा का पर्व कहा जाता है। अखमीरी रोटी का पहला दिन हमेशा निसान 15 होता है। अब पद 6 में जहां शब्द अखमीरी रोटी का पर्व लिखा है, एक महत्वपूर्ण शब्द आम तौर पर अंग्रेजी अनुवादों में छोड़ दिया जाता है, और वह शब्द है तीर्थ यात्रा। शाब्दिक रूप से पद 6 कहता है तीर्थ यात्रा अखमीरी रोटी का पर्व, इब्रानी शब्द जिसे आम तौर पर छोड़ दिया जाता है और जिसका अनुवाद नहीं किया जाता है वह है हग, तीर्थ यात्रा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल के 3 पर्व इस पदनाम के साथ अन्य सभी से अलग हैं कि वे तीर्थ यात्रा है। इसका मतलब यह है कि कोई भी त्यौहार जो हग है उसे व्यक्ति के घर पर नहीं मनाया जा सकता। तकनीकी रूप से फसह एक तीर्थ यात्रा पर्व नहीं है लेकिन अखमीरी रोटी है। फिर भी क्योंकि फसह अखमीरी रोटी के पर्व की शुरुआत की तरह है, इसलिए तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दोनों को एक ही त्यौहार की तरह माना जाता है। इसलिए तकनीकी रूप से सही न होने पर भी कभी कभी 3 तीर्थ यात्रा पर्वों को फसह, सप्ताहों का पर्व शावोत और तंबुओं का पर्व सुकोट कहा जाता है। अधिक सही रूप से कहें तो 3 तीर्थ यात्रा पर्व हैं अखमीरी रोटी, शावोत और सुकोट। इसके अलावा फसह के बाद का दिन निसान की 15वीं तारीख, और इसलिए अखमीरी रोटी का पहला दिन भी सप्त है। सप्त नहीं बल्कि सप्त, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी। यह पूर्ण विश्राम का दिन नहीं बल्कि सामान्य काम से विराम का दिन है, ताकि अखमीरी रोटी के पर्व की तैयारी का विशेष कार्य किया जा सके। कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि सप्त के दिन 7वें दिन के लिए 3 आवश्यकताएं थी। 1, किसी भी तरह के काम से पूर्ण विश्राम दो, यह दिन पवित्र था। और 3, यह दिन सभी इसराइलियों को मनाना था, चाहे वे कहीं भी हों। खैर, निसान 15 मत्सा के पहले दिन जिस तरह के सप्त का आह्वान किया गया था वह उन 3 मानदंडों में से केवल 2 को पूरा करता था, यानी यह पूर्ण विश्राम का दिन नहीं था बल्कि यह पवित्र था और इसे जहां भी कोई इब्रानी रहता हो मनाया जाना था। इसके अलावा भले ही इब्रानियों ने इस दिन को सप्त कहा हो, लेकिन बाइबल इसे केवल एक पवित्र अवसर कहती है जिस दिन नियमित काम नहीं किया जाना चाहिए। उस अंश में सप्त शब्द नहीं आता है।
फिर भी बाइबल की परिभाषा के अनुसार एक पवित्र अवसर जिस पर नियमित काम से कुछ हद तक विराम लिया जाता है वह सप्त है। इसलिए इब्रानियों ने सप्त शब्द को शामिल करके गलत नहीं किया और वर्षों से यह आम ज्ञान था कि कौन सा क्या है। लेकिन यह निश्चित रूप से हम गरीब गैर यहूदियों को भ्रमित कर सकता है।
मत्ज़ा के पहले दिन से शुरू होकर 7 दिनों तक कोई भी खमीरी रोटी किसी इब्रानी द्वारा नहीं खाई जा सकती। वास्तव में कोई भी खमीर, कोई भी ऐसी चीज जो किण्वन का कारण बनती है, किसी के घर में मौजूद भी नहीं हो सकती। फिर भी हम पाएंगे कि वास्तव में 8 दिनों तक कोई भी खमीर नहीं खाया जाता है, क्योंकि पासओवर पर मत्ज़ा के पर्व की शुरुआत से 1 दिन पहले कोई भी खमीर मौजूद नहीं होता है या खाया नहीं जाता है। इसलिए वास्तव में 8 दिनों तक खमीर खाने या अपने घर में मौजूद होने पर प्रतिबंध है। मुझे कुछ स्पष्ट करने में मदद करने के लिए बस 1 सेकंड पीछे जाना चाहिए। फसह एक तीर्थ यात्रा पर्व नहीं था, लेकिन मात्जा था। हालांकि बाइबल, विशेष रूप से नया नियम को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि लोगों को अपने पेशाच मेमनों को बलि के लिए मंदिर में लाना पड़ता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। फसह का मतलब वैसा ही होना था जैसा कि मिस्र में था, कुछ ऐसा जो घर में पारिवारिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता था। फिर भी मात्जा के पर्व के लिए आवश्यक तीर्थ यात्रा के कारण यात्रा आमतौर पर समय पर यरूशलेम पहुंचने के लिए फसह के दिन से पहले ही शुरू हो जाती थी। इब्रानी आबादी के बहुत से लोग फसह यरूशलेम में मनाते थे और अनिवार्य रूप से अपने मेमनों को वहां बलि चढ़ाते थे। हालांकि ये बाइबल की आवश्यकता नहीं थी कि वे फसह के दिन यरूशलेम में हों या उनके मेमनों को मंदिर में बलि किया जाए। बेशक सबसे पवित्र यहूदी अपने मेमनों को मंदिर में पुजारी द्वारा बलि चढ़ाना और फिर पवित्र शहर में और उसके आसपास स्थित सैकड़ों सार्वजनिक भट्टियों में से किसी एक पर पकाना पसंद करते थे, ठीक उसी तरह जैसे सबसे पवित्र ईसाई विवाह, अंत्येष्टि, यहां तक कि प्रार्थना भी चर्च भवन के अंदर करना पसंद करते हैं। किसी तरह यह अधिक धार्मिक लगता है। अखमीरी रोटी मत्ज़ा के पर्व का अंतिम दिन, 7वां दिन भी एक पवित्र अवसर घोषित किया गया था जिसमें सामान्य कार्य नहीं किया जाना था। इस तरह का सप्त मत्ज़ा के पहले दिन की तरह ही था। ऐसा नहीं था कि कोई काम नहीं किया जा सकता था, बस ऐसा नहीं था जो किसी का नियमित काम या शिल्प या नौकरी हो। और इसीलिए कोई भ्रम न हो, भले ही यह सप्त मत्ज़ा के 7वें और अंतिम दिन था, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सप्ताह के 7वें दिन ही हो। केवल कुछ वर्षों में ही मानक साप्ताहिक 7वां सप्त मत्ज़ा पर्व के अंतिम दिन या पहले दिन के साथ मेल खाता है। इसलिए दिनों की गिनती के तरीके और पर्व के दिनों के क्रम के कारण 7 में से 5 वर्षों में मत्ज़ा के पर्व में वास्तव में 4 सप्त शामिल थे। पर्व के पहले दिन का सप्त, जिसे कभी कभी तैयारी का दिन भी कहा जाता था, फिर जैसा कि हम बाद में देखेंगे प्रथम फलों के लिए एक और सप्त, और फिर अगले कई दिनों के दौरान कभी कभी मानक साप्ताहिकम 7वें दिन का सप्त होता था, और फिर अंत में मत्ज़ा का आखिरी दिन जो भी सप्त था। अन्य वर्षों में सप्तों में से एक 7वें दिन सप्त के दिन पड़ता था, इसलिए केवल 3 सप्त के दिन होते थे।
मौखिक परंपराएं जो पेशाच और अखमीरी रोटी के हर पहलू को विस्तार से बताती हैं, वे लंबी और उबाऊ हैं। ये मुख्य रूप से मिशनाह ट्रैक्टेट पेसाहिम में पाई जाती है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यह वास्तव में काफी दिलचस्प है। हम वहां नहीं जा रहे हैं या हम उन नियमों और विनियमों को देखने में 2 या 3 सप्ताह बिता देंगे। इसके बजाय मैं अपने दिमाग में ज्यादा महत्व रखने वाली किसी चीज पर थोड़ा समय बिताना चाहूंगा। दूसरे शब्दों में, यह सब हमारे लिए क्या मायने रखता है और इब्रानियों के लिए इसका क्या मतलब होना चाहिए था।
मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि यीशु के बारे में सबसे मुख्य कहानियां बाइबल के किसी न किसी त्योहार की पृष्ठभूमि में घटित हुई हैं। बाइबल के तीर्थयात्रा त्योहार, इसलिए बाइबल में यीशु को इन विभिन्न पवित्र दिनों में भाग लेने के लिए यरूशलेम जाना था, जैसा कि हर अच्छा और समर्पित यहूदी करता था। मुझे एक और बात बतानी है जो मुझे आश्चर्य है कि बताने की आवश्यकता है, लेकिन कई लोगों से बात करने के बाद मुझे डर है कि इसकी आवश्यकता है। यीशु के जीवन की महान घटनाएं जिन्हें हम ईसाई आम तौर पर मनाते हैं, उन्हें याद करने के लिए नए ईसाई त्यौहार नहीं बनाए गए, बल्कि यीशु के जीवन की ये महान घटनाएं मूसा के समय से चली आ रही इब्रानी छुट्टियों पर हुई थीं। फसह नामक छुट्टी मसीह के क्रूस पर चढ़ने का परिणाम नहीं थी। फसह मसीह के जन्म से कम 1300 साल पहले से मनाया जाता रहा था, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि मसीह को उस नियत दिन पर मार दिया गया था। पेंटेकोस्ट उस भयानक क्षण के लिए बनाया गया कोई नया अवकाश नहीं था जब पवित्र आत्मा मनुष्यों पर उतरी थी। पेंटेकोस्ट, जिसे इब्रानी में शावोत कहा जाता है, माउंट सिनाई पर कानून में स्थापित किया गया था। पवित्र आत्मा केवल उस लंबे समय से स्थापित नियत दिन पर आया था। तो हम जो खोजने जा रहे हैं वह यह है कि 7 बाइबल पर्वों में से प्रत्येक हमारे द्वैत पैटर्न की वास्तविकता का एक भविष्यवाणी उदाहरण है, यानी इन 7 पर्वों में से प्रत्येक का एक भौतिक घटक था। बलिदान और समारोह और दावत या उपवास जो मिस्र छोड़ने या वसंत की फसल लाने जैसी वास्तविक घटना का स्मरण करते थे, फिर भी 7 पर्वों में से प्रत्येक का एक समानांतर आध्यात्मिक घटक भी है, एक उच्च अर्थ जो कि यीशुआ के आने तक और उसके बाद भी इसराइलियों को प्रकट नहीं किया गया था। फसह एक ऐसी घटना का स्मरण करता है जो वास्तव में घटित हुई थी। इसराइलियों ने वास्तव में एक मेमने का वध किया, उसका खून मिस्र में अपने घरों की चौखटों पर लगाया, और उस खून ने वास्तव में उन्हें मृत्यु से बचाया जो मिस्र के हर कोने में बेरोकटोक और बिना दया के बह रही थी। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसे अच्छी तरह से दर्ज किया गया था, और मिस्र आज भी इसके बारे में करवाहट से भरा हुआ है। फिर भी फसह ने भविष्यवाणी करते हुए आध्यात्मिक रूप से उस दिन की भी प्रतीक्षा की जब परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया मेमना आएगा और प्रत्येक व्यक्ति के घर की चौखों पर अपना खून लगाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, ताकि हर मनुष्य के जन्म के बाद आने वाली अनंत मृत्यु उन लोगों पर न पड़े जो यहोवा के मेमने पर भरोसा करते हैं, और वह मेमना यीशु था और है। पेसाज के दिन निसान 14 लगभग 30 में फसह का सर्वोच्च अर्थ घटित हुआ। यीशुआ हामाशियाच, फसह का मेमना एक बार और सभी मानव जाति के लिए बलि चढ़ाया गया। बेशक वह फसह के दिन मरा, क्योंकि यह पैटर्न मिस्र में 13 शताब्दियों पहले स्थापित किया गया था। मिस्र में किसी को भी अपने दरवाजे की चौखट पर मेमने का खून लगाने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, और आज किसी को भी मसीहा का खून स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। मिस्र में बुद्धिमानी से चुने गए ज्येष्ठ पुत्र मिस्र के या इब्रानी जीवित रहे, जिन्होंने नहीं किया वे मर गए। जो आज यीशु के खून की सुरक्षात्मक शक्ति को स्वीकार करते हैं वे हमेशा के लिए जीवित रहेंगे आध्यात्मिक रूप से। जो लोग इस बहुमूल्य प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं वे नष्ट हो जाएंगे शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से। ये मेरे नियम नहीं है, ये यहोवा के नियम है। फसह एक ऐसा पर्व है जो पहले से ही शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पूरा हो चुका है, इसलिए यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका हम इंतजार करते हैं, बल्कि हम स्मरणोत्सव में पीछे देखते हैं। फसह स्मरण का दिन है, यह एक पूरा हुआ कार्य है। अखमीरी रोटी का पर्व पाप और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले क्षय के बारे में है। खमीर किण्वन का कारण बनने वाली कोई भी चीज हर इजरायली घर और उनके द्वारा खाए जाने वाले किसी भी भोजन से दूर होनी चाहिए। किण्वन क्षय की एक प्रक्रिया है। किण्वन जिसके कारण रोटी फूलती है और अंगूर शराब में टूट जाते हैं क्षय को सुविधाजनक बनाने का एक साधन है। खमीर वह एजेंट है जिसे भोजन में मिलाया जाता है जो क्षय की तीव्र दर किण्वन लाता है, और बाइबल खमीर और पाप के बीच एक सीधा समानांतर बनाता है। पाप मनुष्य और दुनिया में वह एजेंट है जो मृत्यु और क्षय का परिणाम है। जितना अधिक खमीर मिलाया जाता है किण्वन प्रक्रिया उतनी ही तेज और अधिक हिंसक होती है। जितना अधिक पाप हमारे अंदर होता है उतनी ही तेज और अधिक हिंसक हमारी क्षय होती है शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से। अखमीरी रोटी का पर्व मातजा, जैसा कि फसह था, इज़राइल के मिस्र छोड़ने की याद दिलाता था।
इसराइल को जल्दी से जल्दी जाना था, इसलिए उनके पास नियमित और पसंदीदा तरीके से रोटी बनाने का समय नहीं था, जैसे कि उसे फूलने और फिर पकाने का समय देना। इसलिए उन्होंने बिना खमीर के रोटी बनाई। पारंपरिक बेडोइन तरीका और गोशेन की भूमि से निकलने के बाद पहले कई दिनों तक उस अखमीरी रोटी को खाया, खमीर पाप पीछे रह गया। कोई क्षय कोई पाप इसराइल के साथ उस नए जीवन और नई भूमि में नहीं जाना था जो उन्हें दी गई थी। तोरह एक दिलचस्प शब्द का उपयोग यह वर्णन करने के लिए करता है कि यहोवा ने वास्तव में क्या किया जब उसने इसराइल को मिस्र से बचाया और फिर उन्हें उनके बंधन से मुक्त किया। मुक्ति, उन्हें मुक्ति मिली। मुक्ति का मतलब है कि उनकी स्वतंत्रता के लिए एक कीमत चुकानी पड़ी और वास्तव में यह चुकाई गई। हजारों हजार मिस्रियों और निस्संदेह काफी इसराइलियों के साथ साथ सैकड़ों हजारों निर्दोष पशुओं की मृत्यु हो गई ताकि इसराइल को छुराया जा सके। चीजों के क्रम पर ध्यान दें, सबसे पहले इसराइल को पेशाच मेमने के प्रायश्चित रक्त को स्वीकार करना पड़ा और फिर उनके जीवन से पाप खमीर हटा दिया गया, अब उन्हें छुराया गया। हमारे लिए भी यही है और यह सब सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा का कार्य था।
यीशु मर गया और कब्र में चला गया, परंतु क्योंकि वह परम अखमीरी रोटी था, उसमें कोई पाप नहीं था, इसलिए उसका शरीर सर नहीं पाया। याद रखें, सर न खमीर के कारण होती है। यीशु जीवन की रोटी है, ऐसा हमें बताया गया है। वास्तव में वह जीवन का माज्जा है। वह अखमीरी पाप रहित जीवन की कभी न सरने वाली रोटी है। वह क्रूस पर चढ़ा और मर गया, यही फसह है। फिर वह उस कब्र में गया, सरता नहीं, और वह नए जीवन में प्रवेश करता है। वह अखमीरी रोटी है। जैसे यीशु फसह के दिन मरा था, वैसे ही वह अखमीरी रोटी के पर्व के दौरान कब्र में प्रवेश करता है। मिस्र में जो घटनाएं घटी, अखमीरी रोटी को जल्दी जल्दी पकाना और वहां से निकलने की जल्दी ऐतिहासिक है। वे घटित हुई और अच्छी तरह से प्रलेखित है। ये भौतिक स्तर पर चीजें घटित हुई। आध्यात्मिक स्तर पर जब यीशु को उस कब्र में रखा गया और उसके पाप रहित शरीर ने सरने से इनकार कर दिया और फिर वह जी उठा, तो अखमीरी रोटी का पर्व पूरा हुआ। हम मसीह के साथ एकता में उसके फसह के लहू को स्वीकार करने के बाद पाप खमीर को अपने जीवन से हटा देते हैं, क्योंकि हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। हमारे शरीर सर जाएंगे क्योंकि वे खमीर पाप से पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी आत्माएं सर नहीं जाएंगी क्योंकि खमीर पाप हमारे अस्तित्व के उस पहलू से हटा दिया गया है, बल्कि हमारी नवीनीकृत आत्माएं हमारे प्रभु के साथ एक नए और अनंत जीवन की ओर बढ़ेंगी। मज्जा का पर्व एक स्मरण है। यह शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से पूरा हो गया है। हम अगले सप्ताह जारी रखेंगे।